चैप्टर 6 अंतःकरण में दखल किसकी। बुद्धि करवाती है असहजता।
प्रकृति कब सहज होगी? जब बुद्धि बहन विश्राम लेगी तब प्रकृति सहज होगी। जब तक कॉलेज में पढ़ते थे तब तक बुद्धि बहन आती थी, लेकिन अब पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी क्या जरूरत है। अब उसे कह दो कि आप घर पर रहो, हमें आपकी जरूरत नहीं है। उसे पेंशन दे देना है। बुद्धि चंचल बनाती है, इसीलिए आत्मा का जो सहज स्वभाव है उसका स्वाद चखने को नहीं मिलता। बाहर का भाग ही चंचल है, लेकिन यदि बुद्धि को बाजू में बैठाए रखे तो सहज सुख बरतेगा। यदि कुत्ता दिखा तो ही बुद्धि कहेगी, कल उसे काटा था, उसी के जैसा यह कुत्ता दिखाई दे रहा है। यदि मुझे काट देगा तो, अरे उसके हाथ में क्या सत्ता है, व्यवस्थित में होगा तो काटेगा। बुद्धि तू बाजू में बैठ जा। अगर खुद की सत्ता होती तो लोग खुद का सीधा नहीं करते, लेकिन सीधा नहीं हुआ। बुद्धि तो शंका करवाती है, शंका होने से दखल होता है। हमें तो अपने निशंक पद में रहना है। संसार तो शंका शंका और शंका में ही रहने वाला है।
करो डी वैल्यू एक्स्ट्रा बुद्धि की।
मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों जो अंतःकरण के रूप में है उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह जो एक्स्ट्रा बुद्धि है वह किसी काम की नहीं है। यह संसार ही बुद्धि की दखल है। यदि यह बुद्धि नहीं होती तो संसार रहता ही नहीं। हमारी बुद्धि खत्म हो गई है, इसलिए हमें बुद्धि के ऊपर का ज्ञान रहता है। हमारी बुद्धि खत्म हो चुकी है, हम में बुद्धि नहीं है, हम अबुद्ध हो गए हैं। यह हमारी सहजता ज्ञान पूर्वक की है।
सभी प्रकार की कुशलता प्राप्त करने के लिए बुद्धि चाहिए या फिर सहजता से भी प्राप्त हो जाती है?
सहजता से ज्यादा प्राप्त होती है। बुद्धि से उलझने होती हैं, उसके बावजूद भी बुद्धि व्यर्थ नहीं है। बुद्धि बाद में हल ला देती है, सहजता के बजाय ज्यादा अच्छा हल ला देती है, लेकिन पहले बहुत उलझन में डाल देती है, जबकि सहजता बहुत हितकारी चीज है।
यदि बुद्धि वाले व्यक्ति को सहज होना हो तो क्या करना पड़ेगा?
वह तो बुद्धि अपने आप कम होती जाएगी। यदि वह खुद तय करेगा कि इस बुद्धि की वैल्यू नहीं है तो वह कम होती चली जाएगी। आप जिसकी कीमत ज्यादा मानते हो वह भीतर में बढ़ती जाती है, और जिसकी कीमत कम हो गई वह घटती जाती है। पहले इसकी कीमत ज्यादा मानी थी, इसलिए यह बुद्धि बढ़ती गई।
बुद्धि का जो मैल है, बुद्धि का आवरण है, वह धुल जाना चाहिए ना?
जब तक हमें जरूरत है तब तक वह रहेगी। अभी तो लोग बुद्धि बढ़ाना चाहते हैं, और बुद्धि कैसे बढ़े उसके उपाय ढूंढ निकालते हैं। यह तो बुद्धि का ही पोषण करता रहता है, फिर उसमें खाद डालता है, उससे बुद्धि बढ़ गई। सिर्फ मनुष्य ही जरूरत से ज्यादा सयाने हैं, बुद्धि का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं।
यदि कोई ज्ञान लिए बगैर भी वह सीधे साधे सरल मार्ग से जाता है और उसकी समझ के अनुसार व्यवहार में सत्य और निष्ठापूर्वक रहता है, तो वहां पर जो क्लेश का अभाव रहता है और यहां पर ज्ञान लेने के बाद जो क्लेश का अभाव रहता है, उनमें क्या डिफरेंस है?
वह जो क्लेश का अभाव था ना, वह आप बुद्धिपूर्वक करते थे, और यह जो क्लेश का अभाव है वह सहज भाव से रहता है, इसमें कर्तापन छूट जाता है।
समझ समाती है बुद्धि की दखल।
तो बुद्धि को खत्म कर दीजिए, आप्तवाणी समझने के लिए तो बुद्धि का पना भी कम पड़ जाता है।
इसलिए बुद्धि के साथ थोड़ी समझ भी बढ़ानी है। जो ज्ञान नहीं कहलाता और बुद्धि नहीं कहलाती, ऐसी समझ ले आओ। समझ जो बुद्धि भी नहीं कहलाती और ज्ञान भी नहीं, जब वह समझ पूर्ण हो जाती है तब उसे ज्ञान कहते हैं।
बुद्धि की दखल से रुका है आनंद।
बुद्धि के चले जाने के बाद आनंद बहुत बढ़ता जाता है। यह आनंद का धाम ही है, लेकिन बीच में बुद्धि दखल करती है।
यहां जो आनंद का धाम है वह क्या है?
मैंने आपको जो दिया है वह आनंद का धाम ही दिया है, मोक्ष ही दिया है। बुद्धि बीच में आती है इसलिए दखल करती है। जो बुद्धि संसार में हेल्प करती थी,
अर्थात जो रिएक्शनरी आनंद है, ऐसा आनंद नहीं होता, लेकिन क्या इससे भी ऊंचा आनंद रहता है?
नहीं, ऊंचे का मतलब मूल आनंद स्वरूप ही है। आपको आनंद ही दिया है, लेकिन इसमें यह बुद्धि जो संसार में बड़ा बनाती थी, जो बुद्धि हमें मजबूत करके बड़ा व्यापार करवाती थी, वही बुद्धि अभी बीच में आ रही है। यहां हिंदुस्तान में जितने बुद्धिशाली बुद्धि के धर्म हैं, उनमें से किसी में भी मोक्ष का मार्ग नहीं है। बुद्धि का मतलब मोक्ष से दूर, और जो कभी भी मोक्ष में नहीं जाने दे उसे बुद्धि कहते हैं।
बुद्धि वह ज्यादा बंधन वाला मार्ग है।
संसार में सब अच्छा कर देती है, फर्स्ट क्लास अच्छा कर देती है, लेकिन कहती है वहां नहीं जाने दूंगी। अर्थात इस तरफ बुद्धि का खिंचाव है और उस तरफ प्रज्ञा का खिंचाव है। प्रज्ञा कहती है जो व्यक्ति हाटली हो उसे मैं हेल्पफुल करूंगी, आगे ले जाऊंगी, ठेठ तक ले जाऊंगी, मोक्ष में ले जाऊंगी। हमारी बुद्धि चली गई इसलिए हमारा हार्ट इतना ज्यादा प्योर है ना, एकदम प्योर। मुझे कहते थे कि हाटली वाणी,
हृदय को स्पर्श करने वाली सरस्वती, इस वाणी का लाभ अनोखा है। यह वाणी इतनी असरदारक है कि जिस पजल का हल बुद्धि से नहीं आता उसका हल यह वाणी ला देती है।
यह वाणी प्रत्यक्ष सरस्वती कहलाती है।
परेशानी है विपरीत बुद्धि के कारण।
भाव कर्म, नौ कर्म और द्रव्य कर्म के जाल को हटा दो, फिर देखो अबुद अध्यास से। यदि अबुद अध्यास होगा तो वे जाले हट जाएंगे, बुद्धि से वे जाले नहीं हटेंगे। बुद्धि तो अपना काम करती रहेगी लेकिन उसका उपयोग नहीं करना है। यह तो जहां सांप हो वहां बुद्धि के लाइट से देखने पर अजंपा यानी बेचैनी, अशांति, घबराहट होता है। जबकि व्यवस्थित कहता है यदि तू तेरे रास्ते से जाएगा ना तो कोई भी नहीं काटेगा, तब निराकुलता रहती है। बुद्धि तो संसार में जहां जहां उसकी जितनी जरूरत है उतना उसका सहज प्रकाश देती ही है और संसार का काम हो जाता है। लेकिन ये तो विपरीत बुद्धि का उपयोग करते हैं कि यदि सांप काट लेगा तो, वही उपाधि करवाती है। सम्यक बुद्धि से सभी दुख चले जाते हैं जबकि विपरीत बुद्धि सभी दुखों को इनवाइट करती है। बुद्धि तो यह देखने के लिए है कि सामने वाले को किस तरह से लाभ हो, लेकिन यह तो दुरुपयोग करती है, उसे व्यभिचारिणी बुद्धि कहा है। बुद्धि से यह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सहजा सहज प्राप्त हो जाए ऐसा यह संसार है। यह तो भोगना ही नहीं आता, वरना ऐसा है कि मनुष्य के जन्म में भोग सकते हैं लेकिन यह मनुष्य भोग ही नहीं सकता। और वापस इनके टच में आए हुए सभी जानवर भी दुखी हुए हैं। अन्य करोड़ों जीव है उसके बावजूद भी सिर्फ यह मनुष्य ही दुखी है, क्योंकि सबका दुरुपयोग किया, बुद्धि का, मन का, सभी का ही। सिर्फ यह मनुष्य ही निराश्रित है। यदि चोर सामने आ जाए तो मेरा क्या होगा, ऐसा विचार इन मनुष्यों को ही आता है। मैं कैसे चलाऊंगा, मेरे बगैर चलाएगा ही कौन। इस प्रकार की जो चिंता करते हैं वे सभी निराश्रित ही हैं, जबकि जानवर भगवान के आश्रित हैं। उन्हें तो आराम से खाना पीना मिलता है, उनके लिए डॉक्टर, हॉस्पिटल जैसा कुछ भी नहीं है, और उन लोगों के लिए अकाल जैसा भी कुछ नहीं है। हां, जो जानवर मनुष्य के साथ में रहते हैं जैसे गाय, बैल और घोड़ा वगैरह, वापस दुखी हुए हैं। बुद्धि तीन प्रकार की है, एक अव्यभिचारिणी बुद्धि, दूसरी व्यभिचारिणी और तीसरी सम्यक बुद्धि। इन तीनों प्रकारों में जिन्होंने किसी जन्म में जिन यानी तीर्थंकर के दर्शन किए हों उन्हें सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है। यदि शुद्ध जिन के दर्शन किए हों और वहां पर श्रद्धा बैठी हो तो वह बीज व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए अभी सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है और फिर सहज भाव से मोक्ष मार्ग मिल जाता है।
बुद्धि के उपयोग से बनते हैं कॉजेस।
मनुष्य जो क्रिया करता है उस क्रिया में कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसमें बुद्धि का उपयोग हुआ तो तुरंत ही कॉजेस बनते हैं, वरना जो क्रिया बुद्धि बगैर की होती है वह सहज कहलाती है। बुद्धि का उपयोग होने से कॉज बंधा, अर्थात यहां पर राग द्वेष करता है ना, किसी के साथ क्रोध करता है, मान या लोप करता है, उसमें बुद्धि का उपयोग किए बगैर नहीं रहता और उससे कॉजेस बनते ही हैं। जब बुद्धि का उपयोग होता है तब क्रोध करता है ना, जब सामने वाला व्यक्ति गाली देता है तब बुद्धि का उपयोग करता है कि मुझे गाली दी, उसमें बुद्धि का उपयोग हुआ इसलिए उसे तुरंत क्रोध आ जाता है। अगर कोई मेरे जैसा हो जिसमें बुद्धि नहीं है तो गाली दे तब भी क्या और नहीं दे तब भी क्या। जब छोटे बच्चे को कड़वी दवा पिलाते हैं ना तब वह मुंह बिगाड़ता है, उसे द्वेष कहते हैं, वह भी कॉज कहलाता है। और यदि अच्छी चीज देते हैं तो वह खुश हो जाता है, वह भी कॉज कहलाता है। खाना वह कॉज नहीं है। यदि आप ताड़ का फल खाओ तो उसमें भी कॉज नहीं बनते, कॉज तो सिर्फ खराब बोलने पर ही बनते हैं। आपको खराब के साथ क्या काम है, अब खा लो ना चुपचाप। लेकिन वे ज्यादा सयाने बनते हैं ना।
नहीं मानना बुद्धि की सलाह को।
यदि अभी भी बुद्धि दखलअंदाजी करती है तो क्या करना चाहिए?
यदि बुद्धि इस तरफ दखलअंदाजी करे तो हमें वहां से दृष्टि फेर लेनी चाहिए। यदि हमें रास्ते में कोई नापसंद व्यक्ति मिले तो हम इस तरफ मुंह फेर लेते हैं या नहीं? उसी तरह से जो आप में दखलअंदाजी करता है उससे उल्टी दिशा में देखना। दखलअंदाजी कौन करता है? बुद्धि। बुद्धि का स्वभाव क्या है कि संसार से बाहर नहीं निकलने देती।
बुद्धि कब खत्म होगी?
अगर आप उसकी तरफ ज्यादा देखोगे नहीं, दृष्टि बदलोगे, तो फिर वह समझ जाएगी, वह खुद ही चली जाएगी। जब तक आप उसे बहुत मान देंगे, उसका एक्सेप्ट करेंगे, उसकी सलाह मानेंगे, तब तक वह दखलअंदाजी करती रहेगी।
जहां इमोशनल वहां असहजता।
इसका मतलब मूल बात यह है दादा कि यदि हम इमोशनल कम होंगे तो हमारा काम अच्छे से होगा।
यदि बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुए तो बहुत अच्छा होगा, 100% काम होगा।
ज्ञाता दृष्टापना की नींव जितनी पक्की होगी उतना इमोशनल नहीं होंगे, जितना इमोशनल नहीं हुए उतना ज्ञाता दृष्टापना पक्का है।
यदि इमोशनल हुए तो ज्ञाता दृष्टापन कच्चा रहेगा, अगर बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुए तो संपूर्ण ज्ञाता दृष्टापन रहा, उसे साहजिकता कहते हैं। यदि इमोशनल हुआ व्यक्ति कोर्ट में गवाही देगा ना तो वह क्लमजी यानी अनगढ़ देगा। कैसा देगा? ठिकाना बगैर का देगा। और साहजिक व्यक्ति तो बहुत अच्छा देगा।
कोर्ट में जो गवाही देते हैं वे तो लुच्चे और होशियार व्यक्ति ही अच्छी तरह से देते हैं।
वे प्रैक्टिकल हो चुके हैं, दूसरे लोगों का काम नहीं। दूसरे लोग तो इमोशनल हो जाते हैं, जो प्रैक्टिकल हो चुके हैं वे जड़ हो चुके हैं।
जहां ज्ञाता दृष्टा वहां सहजता।
व्यवहार में सफल होने के लिए हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए?
आपको तो जहां पर इमोशनल ना हो ऐसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वे लोग तो इमोशनल से भी आगे जड़ हो चुके हैं, वे इमोशनल नहीं हैं।
हाँ, लेकिन ऐसे लोग व्यवहार में जीत जाते हैं, उनके जैसे सफल होने के लिए क्या जड़ होना पड़ेगा?
वे बेशर्म हो गए हैं।
तो क्या सफल होने के लिए हमें बेशर्म होना है?
नहीं, यदि आप बेशर्म हो जाओगे तो फिर नीचे गिर जाओगे। आपको तो ज्ञाता दृष्टा बनना है,
तो क्या हमें इमोशनल पना छोड़ देना है?
छोड़ना नहीं है, इस तरह से कुछ नहीं छूटता। यदि ज्ञाता दृष्टा रहेंगे तो सब छूट जाएगा, छोड़ने से नहीं छूटता। ज्ञाता दृष्टा रहोगे ना तो छूट जाएगा। एक ही दिन, रविवार के दिन, एक दिन शुद्धात्मा की कुर्सी पर बैठना, फिर सब कुछ अच्छा चलेगा। सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहना है। चंदू भाई क्या कर रहे हैं उन्हें देखते रहना है।
अब चंदू भाई गलत करे या सही करे उन्हें देखना है।
गलत कर रहे हैं या नहीं, वह गलत या सच होता ही नहीं। सच्चा झूठा समाज के अधीन है। भगवान के वहां सच झूठ नहीं है, भगवान के वहां फायदा नुकसान भी नहीं है।
तो समाज और व्यवहार के अधीन हमारा जो भाव है, हमारे जीवन का व्यवहार भाग, उसे कैसा रखना है?
व्यवहार तो ऐसा रखना है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसे आदर्श कहे, ऐसा रखो। लोग कहें कि भाई चंदू भाई की बात नहीं करना, वे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जबकि ये तो खुद के घर में ही अच्छे नहीं दिखते। भाई अगर पड़ोसी अच्छा न कहे तो हर्ज नहीं, लेकिन घर में भी अच्छे नहीं दिखते।
लेकिन उसका क्या उपाय है?
यह जो बताया वही, ज्ञाता दृष्टा रहना।
हम ज्ञाता दृष्टा तो रहते हैं, लेकिन यदि चंदू भाई से उल्टे सीधे काम हो जाते हो और परिणाम गलत आते हो, तो उन्हें सुधारने के लिए हमें क्या करना है?
कुछ भी नहीं सुधार सकते, उल्टा बिगाड़ोगे। अगर अभी 80% बिगड़ा है तो उसे 90% करोगे।
चंदू भाई का सुपरविजन करना है और उसे गाइडेंस वगैरह कुछ नहीं देना है?
सुपरविजन का मतलब सिर्फ देखना और जानना है, गाइडेंस वगैरह कुछ नहीं देना है।
सुधारना या कोई कर्तापद में नहीं रहना है? सुधारने की जरूरत ही नहीं है?
सुधरता ही नहीं, बल्कि सुधारने जाता है तो खुद बिगड़ जाता है। अगर इन पुरुषों को एक दिन के लिए रसोई सौंप देना तो सब बिगाड़ देंगे। कड़ी सब्जी बिगाड़ देंगे, फिर दाल बिगाड़ देंगे, नमक मिर्च सब्जी भी बिगाड़ देंगे, सब कुछ बिगाड़ कर रख देंगे। क्योंकि बुद्धि वाला ऐसा सोचेगा कि यह ज्यादा हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इमोशनल हो गया इसीलिए बिगड़ा।
साहजिक का काम होता है सरल।
स्त्रियां तो 50 लोगों का खाना बना सकती हैं। यदि 100 लोगों के लिए खाना बनाना हो तो पुरुष बनाते हैं।
वे सब साहजिक हो गए हैं। जो साहजिक हो गया है वह एक्सपर्ट बन जाता है।
वह तो हमारा काम नहीं है इसलिए बिगड़ता है ना दादा। हम अपने व्यापार धंधे के फील्ड में एक्सपर्ट हैं। चंदू भाई को किसी फील्ड में एक्सपर्ट तो बनाना पड़ेगा ना।
हमें क्या बनाना है, वह बनकर ही आया है।
तो फिर वह किस फील्ड में एक्सपर्ट है उसे जानना तो पड़ेगा ना। वह जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसे उस काम में तो लगाना पड़ेगा ना।
हमें नहीं लगाना है, अपने आप सब चलता रहेगा। फील्ड वगैरह सब है, लाए हुए आटे को फिर से पीसने की आपको जरूरत नहीं है। अंदर इतना बड़ा साइंस चलता है, यदि एक ही दिन अंदर थोड़ा बाइल्स या कुछ कम पड़ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अंदर बहुत जबरदस्त चलता है, संभालने वाले हैं। यह बाहर तो आप निमित्त मात्र हो, आप में पागलपन आ जाता है। यह मैं हूं, मैं करता हूं, अरे मैं कुछ नहीं करता। अगर आपको उन बाइल्स को डालने को कहा होता ना तो आप ज्यादा डाल देते। क्या करते, कल अच्छा पचेगा, पकौड़े खाएंगे और लड्डू जलेबी खाएंगे। अंदर ज्यादा डाल देते, फिर 10 दिन के बाद बिल्कुल भी खाया ना जाए ऐसा हो जाता है, क्योंकि उसने ज्यादा कोटे का उपयोग कर लिया। कुदरत ने जो कोटा तय किया है वह ठीक है।